Oh. জগন্নাথ ভজন ভুজ
আহ
এই ছেলেটা আছে না জগন্নাথ ভুজন ভুজন জগত্তারিণী ছেলে এটা
আমি শুনতে পাচ্ছি
এই ছেলেটা বসে আছে ভুরিজন জগত্তারিণীর ছেলে
ভুরিজন
জগত্তারিণী ও
উদ্ধব প্রসঙ্গ কি রচনা Yeah.
बोलो
के बोल
अच्छा एक मिनट बोला दूसरा माइक में
कैसे हैं
आपका आशीर्वाद
ठीक है आप सुखी रहिए আমার পরেও বলবে আর বলবো তো আমি বলবো
আপনি সামনে হম সবই কে সামনে শ্রী গুরুজি বিরাজমান আপনি সামনে শ্রীমদ ভাগবত কি কথা প্রসঙ্গ মে उद्धव जी के सानिध्य में जो कि ब्रज गोपियों के विरह का वर्णन हो रहा था जिसमें भ्रमर गीत प्रसंग में ब्रजवान नंद ने श्री राधा अत्यंत विरह बैठूल है जहां पर उद्धव क्यारी में फूलों के सेज में गोपियों ने राधा जी को सुला दिया और फूलों के समान उनका शरीर एक बराबर हो गया इतनी दुबली पतली छीन हो गई ऐसी दशा में गोपियां उनके नाक में रुई लगा करके कहीं पल्स देखती है श्वास देखती है श्वास चल रहा है जब उद्धव जी आए और बैठे वहीं पर तो काला भ्रमर गुन गुन करता हुआ उड़ता हुआ राधा जी के चरणों में बैठने जा रहा है। राधा जी तो दिव्य उन्मादिनी है, विरजनी है, जो अभी वर्णन किया गया था। अंतर्दशा में खोई हुई, जबकि अंत में राधा जी यह कहती है, अभी वत मधुपुरी याम आर्य पुत्र धनास्ते। क्या आर्य पुत्र मधुपुरी में है? तो कभी यदि होंगे तो कभी लौट कर आएंगे, और कहीं दूर निकल गए हो तो कभी लौटने की संभावना नहीं। क्या कभी वे ब्रजजनों का स्मरण करते हैं? कभी माता पिता का स्मरण होता है उनको? उन्होंने जो अपने हाथ से कभी कभी कोई पौधे लगाए हैं, जिन गायों को चराते थे, बछड़ों के साथ में खेलते थे, जिन सखाओं के साथ में वन विहार करते थे, क्या उनको कभी स्मरण होता है? वे तो कभी भूल नहीं सकते। और ना ही कभी वे भूलेंगे। क्या कभी मथुरा की जो नागरी है कृष्ण की जब सेवा करती है, उन सेवा परिपाटी को देख करके क्या कभी भूल से भी ब्रज गोपियों का स्मरण करते हैं? कभी ऐसे भी बोलते हैं कि तुम लोग इतनी कला परिपाटी जानती हो, ब्रज की गोपियां बचपन से सेवा करती रही परंतु इतनी परिपाटी नहीं जानती थी? ऐसे भी कभी गा करते हैं। और कभी सर्वत्र भ्रमण करते हुए गोपियों जैसी सेवा और गोपियों के जैसी परिपाटी कहीं नहीं मिलेगा। तब भी हमारी कन्हैया क्या लौट कर आएंगे? हम दीनादासियों के मस्तक पर अपना करकमल अर्पण करेंगे, कभी अभय प्रदान करते हुए आश्वासन दे। इतना कह कि राधा जी मूर्छित हो जाती। अभी अभी कीर्तन में भी बड़े सुंदर भावों का व्यक्त किया है, जो कि गोपियों ने उद्धव जी से कहा कि देखो उद्धव, आप देख रहे हो हमारे स्वामिनी जी की क्या दशा, मूर्छित हो गई। ऐसी दशा में जब उद्धव जी से बार बार कहा, यदि कहीं कृष्ण का संदेश लाए हो तो क्यों नहीं बताते हो? पर उद्धव जी कुछ नहीं बता सके। हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए कहा कि विरहीन में महाभागा महान अनुग्रह कृत। मेरे पति, आपने आज महान अनुग्रह किया, मेरे जीवन का परम सौभाग्य आपके महान विरह को हमने देखा। मैं क्या बताऊं, मेरे पास कोई भी शब्द नहीं। कृष्ण की संदेश है, जो कृष्ण ने संदेश दिया उसमें कैसे सांत्वना होगी, यह भी तो मेरे समझ में नहीं। कृष्ण ने कहा, ये गोपियों देखो, ये प्राण प्रियाओं, तुम्हारे साथ हमारा कोई भी विच्छेद नहीं, विच्छेद केवल शरीर से हुआ है। मन प्राण हृदय सभी कुछ तुम्हारे पास है, और तुम्हारा मन प्राण हृदय मेरे पास है, तुमसे हम दूर नहीं है। दूर मानती हूँ यह केवल स्वप्न और मिथ्या झूठ कल्पना समझती हूँ, पर यह नहीं, यह सच है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं दूर नहीं। कृष्ण ने तो संदेश वाक्य में सांत्वना दी, गोपियां कहाँ सांत्वना मानती हैं। मथुरा की ओर देखती हुई, हे रमानाथ, हे नाथ, हे रमानाथ, हे ब्रजनाथार्थी नाथ, हे नाथ, हे राधा नाथ, हे रमानाथ, हे ब्रजजनों के आरती नाशन, यदि आप लौट के आए तब ब्रजभूमि किसी तरह से जिएगी, अन्यथा सदा के लिए यह ब्रजभूमि और ब्रज के जन सभी विदा हो जाएंगे। इतना कहकर मथुरा की ओर देखते हुए बड़े जोर जोर से काट कर रोने लगे। कुछ समय गोपिया किसी प्रकार धैर्य धारण करके उद्धव जी को लेकर नंद भवन में गई। 3 महीने तक जहां चूल्हे में अग्नि प्रचलित नहीं हुई, झाड़ू भी नहीं लगा, न भोजन बना, न कोई खाए पिए। पहली बार गोपियों ने भोजन बना करके नंद बाबा यशोदा माँ को खिलाया, उद्धव जी को खिलाया। गोपियों ने कुछ खाया, इसी तरह से राधा जी विरजनी उन्मादी में बनी रही। उस समय गोपियां राधा जी को धैर्य बांधने के लिए तथा उद्धव जी को साथ में लेकर के कृष्ण की उन लीला स्थलियों को दर्शन कराया जहां पर कृष्ण ने लीलाएं की, और इन्हीं बातों के द्वारा सांत्वना और धैर्य बांधने का प्रयास किया। इसी तरह से 10 महीने तक, जबकि उद्धव जी ब्रज में रहे, सर्वत्र भ्रमण किया, और अंत में उद्धव जी ने गोपियों के चरणों में प्रार्थना की कि एता परम तनुभितो भूमि गोपवत्, अहो ब्रज की गोपियां जीवन सार्थक है संसार में, उनका जीवन धारण सार्थक। परमात्मा भगवान गोविंद में जिनका रूढ़ भाव कृष्ण दर्शन में आंखों के पलक गिरने से जो गोपियां विधाता को सांप देती, गाली देती, बोले विधाता तुम्हें सृष्टि करना नहीं आया, कृष्ण दर्शन में 2 आंखें दी और उसमें पलक गिरा दिया। इतने से पलक के गिरने से कृष्ण दर्शन जनित विरह में उनकी ऐसी दशा होती है। जब कृष्ण के विरह में आज एक एक त्रुटि, एक एक पल, एक एक क्षण करोड़ों जुग के समान भारी पड़ता है, ऐसे रूढ़ भाव विरह में, अधिरूढ़ महाभाव में गोपियां डूबी। ऐसे दिव्य उन्मादिनी ब्रज गोपियां वृषभानु नंदिनी श्री राधा जिनके चरणों की धूल प्रार्थना करते हैं, उनके भाव का एक कण मिल जाए प्रार्थना करते हैं। इसलिए उद्धव जी कहते हैं, ऐसा महु चरण रेणु जुषा महम श्याम वृंदावने किमपि कुल मलतो सदिन। इस वृंदावन के किसी एक प्रांत में गुल्म लता औषधि छोटी छोटी झाड़ी बन करके जन्म हो जाए तो मैं गोपियों के चरण तले मेरे सिर पर आ जाए तो इससे मेरा जीवन सार्थक होगा। इसी तरह से उद्धव जी कहते हैं, जहां रास में लक्ष्मियां प्रवेश नहीं कर सकी, देवियां प्रवेश नहीं कर सकी, और कमलगंधे सुगंधी स्त्रियां भी प्रवेश नहीं कर सकी, जहां ब्रज गोपियों को एकमात्र अधिकार और स्थान मिला, कृष्ण ने उनको सौभाग्य प्रदान किया और उनका अतिथि सत्कार किया, बहुमानन किया। केवल इतना ही नहीं, गोपियां रूठ करके मान करके चली जाएंगी तो कृष्ण का रास उत्सव भी नहीं हो पाएगा। इसलिए कृष्ण उन गोपियों के गलदेश में हाथ हस्त से धारण करते हुए उनको मनाने को प्रयास करने लगे। हे गोपियों, तुम लोग मान जाओ, रूठो मत, तुम लोग चली जाओगे तो किससे रास होगा, किसका रास, किसका भाव आस्वादन करेंगे। ऐसे जो भगवान कृष्ण चंद्र गोपियों के राधा जी के प्रेम को आस्वादन करने के लिए उनको मनाते हैं, सारा संसार समस्त देवी देवताएं जिनके चरण रज की प्रार्थना कर रहे हैं, जिनसे कामना करते हैं, अभिलाषा करते हैं, उनके चरणों के प्रार्थी हैं। आज भी परब्रह्म गोपियों के लिए इस प्रकार जो प्रार्थी बनते हैं, उनके अनुग्रह के प्रार्थी, ऐसे गोपियों का महिमा जहां प्रकाशित हुई है, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणा, ऐसी ब्रज की जो गोपियां हैं, ब्रजवासिनी गोपियां, उन गोपियों के चरण रेणु हमें मिल जाए, तो हमारा जीवन सार्थक होगा। जिनकी पवित्र हरि कथा समस्त त्रिभुवन को संसार को पावन करती है, उन चरण रेणु में हमारा जीवन समाहित हो जाए। इस प्रकार उद्धव जी प्रार्थना करने लगे। इससे आगे आज गुरु जी सुनाएंगे, इसलिए हम उनसे प्रार्थना करते हैं। वे अपने वचनामृत में कुछ भावों को अवश्य व्यक्त करेंगे और रुक्मिणी हरण की कथा भी है इस प्रसंग में। तो हम प्रार्थना करते हैं, आप जितना दुर्संभव हो और जितना कहना चाहें अवश्य आप बताएं, फिर समय होगा तो देखेंगे अंत में और गुरु जी की बताएंगे भी।
गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो। अभी कुछ दिनों से आप लोग श्रीमान तीर्थ महाराज जी से श्रीमद्भागवत की कथाएं सुन रहे हैं। ये श्रीमद्भागवत के गूढ़ रहस्य इत्यादि के साथ में व्याख्यान कर रहे हैं, बहुत ही मर्मांतक रूप में। मैं संक्षेप रूप में इन कथाओं का सार मैं बतलाना चाहता हूँ। कृष्ण गुरुकुल से लौट आए हैं, छत के ऊपर में गए, यमुना को देखा, ब्रज को देखा, ब्रज की याद आ गई, रोने लगे। पिता माता का, माता को और गोपियों का, सखाओं का स्मरण हो गया, धैर्य नहीं धारण कर सके। इतने में उद्धव जी खोजते खोजते आए और देखा जी कृष्ण तो रो रहे हैं, आप क्यों रो रहे हैं? मुझे ब्रज किया है, मेरे माता पिता मेरे बीरा में अंधे हो रहे हैं और गोपियों की तो बात ही किया, वो पागल हो रही है। उद्धव तुम ब्रज में जाओ और उन्हें सांत्वना दो, माता पिता को विशेष करके हमारी प्रिय गोपियों को। उद्धव जी ने सोचा मैं कृष्ण को तो एक पल के लिए भी छोड़ करके नहीं जा सकता, तो मैं कैसे जाऊं? कृष्ण ने कहा उद्धव मैं तो यहां पर खंड मात्र से हूं, पूर्ण रूप से ब्रज में ही है, तुम जाना देखना। और एक बात कृष्ण ने और सोचा, ये सोचा मेरे विरह में गोपियां अनुतप्त हैं, ये बात ठीक है, किंतु एक दूसरे को सांत्वना देती हैं, उनका दुख कुछ बट जाता है, हल्का हो जाता है। ललिता विशाखा राधा जी को समझाती हैं और सब गोपियां इनको समझाती हैं। नदी में बाढ़ आ गई, नदी क्या करती है? अपना पानी चारों तरफ में विभाग कर देती है, वो अपने अंक में सबको नहीं रख सकती, उसका भार हल्का हो जाता है। उसी तरह से मैं यहां पर ऐसा कोई है नहीं जिसे अपने विरह की व्यथा बांट सकूं। यदि उद्धव ब्रज में जाए और जिस पाठशाला में मैंने प्रेम की शिक्षा ली है, जिन प्रिंसिपल से और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से, प्रिंसिपल राधा जी और ललिता विशाखा डिपार्टमेंट की हेड हैं, उस पाठशाला में ये जाए, और कुछ प्रेम की शिक्षा करे तो जब लौट करके आएगा तो उस समय गोपियों की कुछ बातें कहकर अपना विरह बांट सकूंगा, इसलिए इसको भेजना जरूरी है। मूल उद्देश्य यही था। उद्धव जी ने सोचा मैं कृष्ण को छोड़कर के कैसे जाऊं, तो कृष्ण ने कहा जी मैं यहाँ पर, तुम जाओ ब्रज में देखना, मैं वहीं पर हूँ, यहाँ पर तो बहुत आंशिक रूप में। ब्रज उद्धव जी को कंस वाला सोने का रथ जो अब उनके दखल में आ गया है, वो रथ पर उसको बैठाया, सोने के रथ पर भेजा। चलते चलते शाम हो गई, नंद ब्रज में पहुंचे और वहां पर शाम को देखा हजारों गैयां ब्रज से लौट रही हैं, कृष्ण सखाओं के साथ में वहां से लौट रहे हैं और गोपियां सायंकाल में घृत के दीप जलाती हुई दधि मंथन कर रही हैं और गोविंद दामो धर्माधवेति गोविंद दामो धर्माधवेति गोविंद दामो धर्माधवेति गोविंद दामो धर्माधवेति। इस प्रकार से उद्धव जी ने देखा सचमुच में कृष्ण तो यही है, उनका भ्रम मिट गया जो मथुरा में है, मथुरा में आंशिक रूप में केवल है। इसके बाद में शाम के समय में गोधूली चारों तरफ में गायें आ रही हैं, उनके खुर से धूल उठी और उस समय में अंधकार जैसा छा गया। उस समय में नंद भवन के दरवाजे में पहुंचे, नंद बाबा जी ने सुना उद्धव आया है, कृष्ण ने उसे भेजा है, आए बाहर में ले गए भीतर घर में, खाने के लिए घर में कुछ नहीं, खाना बने तो किसके लिए, मैया यशोदा तो विरह में अंधी पड़ी, चूल्हे के ऊपर में मकड़ों ने जाल बुन दिया है, बर्तन औंधे पड़े हुए हैं। इस तरह से अद्भुत वहां की दशा। नंद बाबा ने किसी प्रकार से उद्धव से पूछना चाहा, हमारा लाला कृष्ण कैसे है, किंतु पूछ नहीं सके, पूछते ही गला भरा था, आंखें भराती आंसुओं से बोल नहीं सके। अंत में किसी प्रकार से धैर्य धारण करके बोले, उद्धव हमारा भैया वासुदेव ठीक है, कुशल से तो है, कंस अपने पापों से मारा गया, अपने ही पापों से मारा गया, उसे किसी ने मारा नहीं। उद्धव मुझे कृष्ण की याद आती है, उस याद को स्मरण करने को भूलने के लिए मैं यमुना के किनारे जाता हूं, वहां जाने पर देखता हूं याद आती है, कृष्ण यहां पर खेलता था, सखाओं के साथ में खेलता था, स्नान करता था, वहां पर और कृष्ण की स्मृति बढ़ जाती, मैं गोवर्धन चला जाता, वहां जाने की तो बात ही क्या, यहीं पर तो उसने कितने रास और कितने लीलाएं की थी, सखाओं के साथ में गौएं चराता था, यहाँ
गोवर्धन उठाया था,
और भी स्मृति बढ़ जाई और डकट डकट के रोने लगे। उद्धव जी कहते हैं कि कृष्ण ने भेजा है माता पिता को सांत्वना देने के लिए, मैं इनको क्या समझाऊं, जगत में अपने माता पिता के मरने पर, पुत्र के मरने पर लोग रोते हैं, किंतु कृष्ण के लिए जिनके आंखों में आंसू आ जाए वो तो धन्य है। ये तो कृष्ण के लिए वो नंद बाबा रो रहे हैं। मैं कैसे कहूं जी नंद बाबा कृष्ण के लिए मत रोइए। शास्त्र हमारा मुख बंद कर देते हैं उनका, तब क्या कहूं जी खूब रोइए, तो सांत्वना देना कहा हुआ। मैं क्या कहूं कैसे सांत्वना दूं। अब तुम्हें जैसे तैसे विचार किया, सचमुच में नंद और जसोदा जैसा महाभागा सौभाग्यवान कोई नहीं है। हे नंद बाबा, आप यशोदानंद स्वयं भगवान कृष्ण परब्रह्म तुम्हारे पुत्र होकर के आए हैं, तुमसे बढ़ बढ़ करके और कौन सौभाग्यवान। नंद बाबा बोले, बेटा मैंने सोचा था जो तुमको कुछ अकल आ गई होगी कृष्ण के साथ रहने से, किंतु तुम्हारे अकल के दांत भी नहीं टूटे हैं। तुम जैसा कह तैसा है। उद्धव जी ने कहा जी बाबा क्या कह रहे। उन्होंने कहा जी देखो, पहले मैं जानता था जी कृष्ण हमारा बेटा है, पुत्र है, और अब आप कह तुम कह रहे हो कि कृष्ण स्वयं भगवान है। कितना दुर्भाग्य। मैं बेटा समझता था, भगवान हमारे यहां पुत्र के रूप में आए और हमें छोड़कर के मथुरा चले गए। हमारे अंदर में तनिक भी वात्सल्य प्रेम नहीं है। जहां उनको प्रेम मिलता है वहीं पर कृष्ण जाता है, तो हमें तो प्रेम नहीं। प्रेम था तो महाराज दशरथ में राम के वियोग होने पर कहा हा राम हा राम, बस समाप्त। मेरा तो वज्र के समान हृदय, ये अभी मर नहीं गया मैं कृष्ण के विरह में। इस तरह से बातें होते रही, रात बीत गई, जसोदा मैया चुपचाप सुन रही हैं। सवेरा हुआ, महाराज जी ने बतलाया होगा, उद्धव जी कृष्ण कुंड में स्नान किया, गोपियों के जहां गोपियां थीं उनको देखा। जब से कृष्ण का वियोग हुआ गोपियां घर नहीं लौटी। उसी उद्धव क्यारी में या कदम्ब क्यारी में अलक्षित रूप से रहती थी। जोगमाया ने उनको ढक दिया था कि कोई न देख सके। खाना पीना सब कुछ बंद, स्नान भोजन सब बंद, किसी प्रकार से जीवित हैं। उद्धव जी वहां पर पहुंचे, गोपियां ने कहा ये कौन आया, ये सोने के रथ पर किस लिए आया, किस लिए सोने के रथ पर आया। ओ दूसरे सखी ने कहा जानती नहीं, कंस तो मारा गया है, उसकी तेरहवीं है, उसको पिंड देना है, मथुरा में कोई पिंड नहीं, चलो ब्रज में गोपियां मर गई होंगी कृष्ण के विरह, वहां से उनका हृदय हृत्पिंड निकाल करके और ले आ करके देंगे, कंस का तर्पण करेंगे। इसलिए दूसरी कहानी देखो तो ये सोने का रथ कैसे आया। कृष्ण अब तो मथुरा का राजा हो गया है, तो अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए, अपना जौलूस दिखाने के लिए अपने नौकर को भेजा है सोने के रथ पर के देखो, जहां हमारा नौकर देखो सोने के रथ में चढ़ता है, और तब मैं कैसा हूं। उद्धव जी ने सोचा पृथ्वी फट जाती उसमें समा जाता, मैं सोने के रथ पर चढ़ करके आया क्या, ये तो मान भंग करने का, संतना देने का उपाय नहीं है, मैंने बहुत भूल की। इसके बाद में एक दूसरी कहती है, यहां पर क्यों आया, कौन है ये, कौन, कृष्ण है किंतु कृष्ण नहीं है,
श्याम तो है,
कृष्ण जैसा है, श्यामल रंग का है, उद्धव जी श्यामल कृष्ण के रंग थे, और कृष्ण ने अपना माला इत्यादि पीताम्बर वस्त्र सब देकर के पहनाया था, उद्धव जी के कपड़ों से कृष्ण के अंगों का वहां पर सुगंध आ रहा था। एक कहती है, देखो आंखें भूल कर सकती हैं किंतु नाक भूल नहीं कर सकती, हम कृष्ण के अंग गंध को पहचानती हैं सुन करके, ये कृष्ण तो है किंतु कृष्ण नहीं है, है कौन, ये जरूर कृष्ण का कोई दूत होगा। एक कहता है, जी कृष्ण का दूत आया तो यहां पर आने की क्या जरूरत, हम लोगों के पास में, माता पिता के पास में जाता हूं, हमको सांत्वना दे, अरे हमारा संबंध मानो तो संबंध था और नहीं तो संबंध नहीं है, ऐसा था, विवाहित तो है नहीं, किंतु माता पिता का कोई ऋण पुत्र कभी नहीं चुका, उनके रक्त से बना हुआ उसका जन्म है, अतः उधर में जाकर के उनको सांत्वना दे। इस तरह से उद्धव जी बड़ी लज्जित और बड़े ये हुए, और अंत में उन्होंने गोपियों के चरणों में प्रणाम किया, गोपियां ले गईं, इन्होंने बतलाया, और भीतर में और राधिका जी वहां पर सोई हुई है। उसी समय में घूमता हुआ एक भ्रमर आया, राधा जी ने उसका आवाज सुना, भन 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 कर रहा, और उस समय राधिका जी सोच रही है, कृष्ण तो बिना स्त्रियों के रह नहीं सकता, उसको प्रेयसी चाहिए, तो मथुरा में गया है, वहां पर राजकुमारियां बहुत होंगी और उनका संग कर रहा होगा, उनके साथ में विहार कर रहा होगा, उनको उसी समय में क्रोध हो गया, ध्यानती अंग संगमम, कृष्ण वहां मथुरा में राजकुमारियों के साथ में विहार कर रहा हो, ये स्मरण आते ही बस बड़ा क्रोध हो गया, और धर्म भौरा घूम रहा, ये भौरा कौन है, काला है ना, काला कौन है, कृष्ण, ये कृष्ण ही शायद, हमारे टीकाकारों ने बतलाया है, गोपियों का विरह देखने के लिए भौरे के रूप में आए, और इस भ्रमर गीत को तीर्थ महाराज जी ने वर्णन किया होगा, किस प्रकार से कभी क्रोधित होती हैं, भ्रमर मधुपुरी से आया, मद्यपान करके आया, मधु मधु माने मध्य, अपवित्र, मेरे पैरों को मत छू, वो पैरों को कमल समझ करके उदरी में भन भन कर रहा, मत छू अपवित्र, नहीं जानता है जे मान कैसे जाता, अरे तुम्हारे गोफों पर पीला रंग कहां से आया, कृष्ण किसी प्रेयसी को आलिंगन किए होंगे और उनकी बाल मनमाला पर कृष्ण का औरंग आ गया होगा और वो औरंग तुम्हारे गोफों पर आ गया, नहीं स्वामी जी नहीं ऐसा है, फिर बोलता है मत छू हमें, जा यहां पर तुम्हारी क्या जरूरत है, मधुपुर में जा, वहां कृष्ण की हजारों प्रेयसियां हैं, उनका मान भंग करना वो तुम्हें सब कुछ दे। इस प्रकार से भाव में विभोर और गरुड़ अधिरूढ़ भाव में उद्धव जी देख करके चकित रह गए, इन्होंने बतलाया और उनकी वंदना करने लगे, इन्होंने वंदना का कुछ अंश बतलाया, आशा महो चरण रेणु जी साम हम श्याम वृंदावने किम गुल मल्ल औषधि नाम जब दुस्तजन स्वजन आर्च पछम चहित भेजे मुकंद पद बिंग सुति भीमृंग आशा महो चरण रेण जुषाम हम श्याम। वह गोपियों की चरण धूलि प्राप्त करने के लिए जिसको वेदित्या श्रुतियां भी नहीं पाई, वो उसकी चरण धूलि पाने के लिए मैं वृंदावन की कहीं भी धूप की घास या कुछ दूसरी घास लता गुल्म ऊंचे वृक्ष नहीं ऊंची लताएं नहीं, क्योंकि गोपियां भी शायद के समय में वहां पर कैसे चलेंगी, इसलिए नीचे के धूप की घास इत्यादि बन जाऊं और विसार के समय में उनके चरणों की धूलि ले हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। और क्या उल्टा की
वंदे नंद ब्रजस्ते वंदे नंद
ना ना इसके पहले
जा वही श्री अर्चित
जा भी
जा वही श्री अर्चित
जा वही श्री अर्चित पाद पद्म
अजादी भी राप्त काम
अजादी भी है जिस लक्ष्मी जी की कृपा के लिए ब्रह्मा इत्यादि हजारों वर्ष तपस्या करते हैं वो ब्रह्मा जैसे उनके भी उपास्या ये लक्ष्मी कृष्ण के चरणों को नहीं पाए और गोपियां साक्षात रूप में रास के समय में कृष्ण के चरणों को अपने बस दक्षिणा पर धारण करती हैं, ऐसी कैसे सौभाग्यवती हैं। हम उनको उन गोपियों को नमस्कार करते हैं। उद्धव जी अब बतलाया जब 3 महीने तक रहे उनको सांत्वना दी सब लीला स्थलियों में, जब जाने लगे तो उद्धव जी पूछा राधिका जी से कृष्ण के विरह में तुम लोग बड़ी संतप्त है, मैं कृष्ण से जाकर के कहूंगा गोपियां बड़ी दुखी हैं आपके बिना तो मर जाएंगी। राधा जी बोली ये खबरदार मत कहना, हम तो किसी प्रकार से इसको सह लेती हैं किंतु कृष्ण सुनेंगे जो उनके विरह में व्यथित हैं तो प्राण रखेंगे या नहीं रखेंगे कोई ठीक नहीं, मत कहना। एक कपड़ा है बहुत पुराना पानी से भीग गया, उसको ऐंठने से पुराना कपड़ा होगा फट जाएगा, इसी तरह से कृष्ण के पास में हमारी कथाओं को विरह की बात मत कहना। कहना कैसे, धीरे धीरे करना, निचोड़ना धीरे 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 करना। इस प्रकार से उद्धव जी को ब्रज के सब दही मक्खन और सब दे करके भेजा गया। और एक कीर्तन कृष्णदास कीर्तन ओ ये करो मन रो लागे ना गोपियां कह रही हैं
जय जय श्री राधे हो मन रो लागे ना सखीरी मेरो श्याम बिना मन रो लागे ना हो मन रो लागे ना सखीरी मेरो श्याम बिना मन रो लागे ना श्याम बिना रे घन श्याम बिना मन रो लागे ना श्याम बिना रे घन श्याम बिना मन रो लागे सुनी सुनी लागे सारी ब्रज की नगरी सुनी सुनी लागे सारी
छूट गया। राजपाल झाई के अंत में अंतिम श्लोक है, विक्रीतम ब्रजुवधुभि इदं च विष्णु सद्वान में तो जुनियाद अथ वर्णी भक्ति परम प्रतिलब्ध कामम हृदरोग मासु अपिनत। श्री चक्रवर्ती ठाकुर जी इसकी टीका में बतला रहे हैं, कृष्ण ने जो राष्ट्रलीला इत्यादि किया इसका श्रद्धा पूर्वक बार बार जो श्रवण करता है और इसका वर्णन करता है, तो श्रद्धा पूर्वक बार बार श्रवण करने से और कीर्तन करने से पहले काम कृष्ण के प्रति कामात्मिका भक्ति गोपियों जैसी आती है और फिर उसका हृदय का रोग, हृदय का काम, काम वासनाएं ये सब दूर हो जाती है। जो लोग ऐसा करते हैं वो धीर है, बुद्धिमान है, और जो लोग ऐसा समझते हैं पहले हृदय का रोग दूर हो जाता है तब काम आता है, वो धीर नहीं है। और जो श्रद्धा पूर्वक इन कथाओं का श्रवण और कीर्तन करते हैं उनको अप्राकृत काम आता है हृदय में और सब रोग दूर है, इसको विश्वास जो नहीं करते हैं वह नास्तिक है। इसलिए यद्यपि कोई कोई कहते हैं रासलीला का श्रवण करना अधिकारी, जब तक अधिकार नहीं होता तो क्या होगा, नंतर समाचरे जात मनुष्य ही अनिश्वर विनश्यत आचरण मोढ्यात
जब था रुद्रजंग विषम।
वो लोग कहते हैं बिना अधिकारी हुए मत सुनो, नहीं तो संकर हुए बिना जैसे विष पान करने पर मर जाता है ऐसे ही होगा, किंतु चक्रवर्ती ठाकुर जी ऐसा अनुमोदन नहीं करते हैं। कृष्ण जगत में प्रकट होकर के जो लीलाएं करते हैं उसका बार बार श्रद्धा के साथ जो श्रवण करता है, कीर्तन करता है, वो कृष्ण तत्पर हो जाता है, अतः कृष्ण की भक्ति उसे हो जाती है और जगत से उद्धार हो कृष्ण प्रेम पा जाता है। अब कुंडी नगर नाम का एक राज्य था मध्य भारत में कहीं, राजा भीष्मक थे, उनकी कन्या का नाम रुक्मणी था। रुक्मणी बड़ी सुंदरी थी, अद्भुत रूपवती, युवावस्था में जब आई नारद जी उसके घर में पधारते थे और नारद जी कृष्ण की कथाएं कहते थे, कृष्ण का रूप, उनका गुण, उनकी लीलाओं, बस कृष्ण उसके हृदय में बस गए। उन्हें मन ही मन में ठान लिया कि कृष्ण यदि हम विवाह करेंगे कृष्ण के साथ, दूसरे के साथ में नहीं करेंगे। तो जब बड़ी हो गई तो भीष्मक जी उसके विवाह के लिए चिंतित होने लगे। उनकी, रुक्मणी की मैया की और सब लोगों की इच्छा थी कि कृष्ण के साथ में ही इसकी शादी की जाए, किंतु उसका रुक्मणी भाई था महादैत्य दानव शिशुपाल दंत भक्त जरासंध इत्यादि से उसकी मित्रता, उसने ठीक किया शिशुपाल के साथ में ही हमारी बबाइन की शादी हो और शिशुपाल को निमंत्रण दे दिया ये आप आइए और यहाँ पर हमारी बहन के साथ में शादी होगी। डर के मारे भीष्मक इत्यादि कुछ नहीं बोल सके। कृष्ण वो शिशुपाल बारात लेकर आया विवाह करने के, उसे सोचा कि कहीं कृष्ण आ जाए और हरण कर ले, इसलिए अपनी सारी सेनाओं के साथ में आया और जरासंध भी अपनी पूरी सेनाओं के साथ में और राजा भी पूरी सेनाओं के साथ में संघर्ष करके आए, उसके बाराती बने। जब विवाह एक दिन रह गया रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण को बुलाया और जे ब्राह्मण देवता आप हमारे पूज्य हैं, आप ये पत्र ले जाइए कृष्ण को दीजिए। वो पत्र लेकर के रात ही रात चला, दूसरे दिन शादी होनी है, शाम को रात के वक्त में कृष्ण के पास में पहुंचा राज दरबार में और वो पत्र कृष्ण को दिया। उसमें कहा गया, लिखा था रुक्मिणी ने, मैं संकल्प से आपसे विवाह कर चुकी हूं, हमारे हृदय में कोई दूसरा नहीं बस रहा। श्रीगाल शिशुपाल शादी करने के लिए कुंडी नगर में आ पहुंचा है, बड़े बड़े राजा लोग उसकी रक्षा करने के लिए बराती के रूप में आए हैं सेनाओं के साथ, यदि किसी प्रकार से आप नहीं आए और शिशुपाल के साथ में शादी से पहले मैं विष खा करके मर जाऊंगी। सिंह का भात श्रीगाल कैसे खा सकता है, इसलिए आपके लिए मैं प्रतीक्षा कर रही हूं। ब्राह्मण देवता से पत्र देखा और किसी से कृष्ण ने कुछ नहीं कहा, दारू कहा रथ सजाओ अभी कुंडन का चल, रथ सजा लाया और अकेले ही कुंडन नगर चल पड़े। बलदेव जी ने देखा जी भैया तो चला गया, अकेले गया और वहां पर संग्राम होने की संभावना है, कृष्ण रुक्मिणी से शादी कर उसको हरण करने के लिए जा रहा, वो अपनी चतुरंगणी सेना लेकर के वो भी पहुंचे पीछे से। रुक्मिणी घर चिंता कर रही है, अभी तक तो आए नहीं, ब्राह्मण देवता भी नहीं आया, अब मेरा मरण ही निश्चय है क्या। तो उसके बाएं अंग फड़कने लगी, आंख फड़कने लगी, भुजाएं, अच्छा अभी समय है, कुछ
शुभ लक्षण है,
शुभ लक्षण देखा और कहा अभी समय है, घबराना नहीं चाहिए। इतने में कृष्ण पहुंचे, भीष्मक जी ने देखा कि कृष्ण भी बारात देखने के लिए आए हैं उनको और बलदेव जी की सेनाओं को सबके लिए भी सारी व्यवस्था की। दूसरे दिन सवेरे विवाह के दिन में भीष्म की प्रथम ये नियम था कि कन्या देवी जी को पूजा करने के लिए जाएगी तब विवाह होगा। रुक्मिणी जी दोले पर चढ़कर रथ पर चढ़कर और सेनाओं के बीच में सेना उनको घेर ले गए, बड़े बड़े राजा महाराजा और जो आए थे शिशुपाल की तरफ से उनको घेर करके चले। रुक्मिणी रथ से उतर करके देवी के मंदिर में जा रही और वहां पर पूजा किया, कृष्ण ही हमारे पति हूं ये आपसे प्रार्थना करती हूं। इसके बाद पूजा करके निकली घर से, देखा जी कृष्ण तो सबको सेनाओं को चीरते हुए एकदम निकट में आ गए और उनका हाथ पकड़ करके रथ पर चढ़ा दिया और रुक्मिणी के हाथों में वो राजा की तो लड़की घोड़ों की रथ की बागडोर दे दी, वो रथ चलाने लगी और कृष्ण धनुष बाण लेकर इतने बलदेव जी आ गए, हरण लेकर कर करके चले द्वारका। सब राजा लोग मिल करके कृष्ण को से उसको छीन लेने के लिए और रुक्मी भाई मैं रुक्मी को रुक्मिणी को छीन करके ले आऊंगा नहीं तो कुंडी नगर लौटूंगा नहीं, ये कह करके चला। कृष्ण ने बलदेव जी ने क्षण मात्र में कुछ ही क्षणों में सब राजाओं को परास्त कर दिया, उनके जितने आभूषण थे सब ग्रहण कर लिए। जरासंध ने शिशुपाल को कहा भाई ये काल का समय है, ये ग्वालिया ये युद्ध क्या जाने किंतु काल विपरीत है और कल यदि भाग्य हमारे समय फिर इसको जीत लेंगे। तो तुम एक बात करो, तुम अब शोक मत करो, लौट जाओ। और इस तरह से सांत्वना दे करके लौट आया। रुक्मी अकेले अपनी सेनाओं के साथ में पीछे गया, किंतु कृष्ण ने उसे भी हरा दिया, उसे मारना चाहा। बलदेव जी आ गए, अरे रुक्मिणी का तो भाई है,
तुम्हारा साला है,
तुम्हारा साला तो है, इसे जान से मत मारो। तो कृष्ण ने क्या किया, मारने के समान ही है, ये सिर पर 5-6 चोटियां रख दी, दाढ़ी ऐसे रख दी मुसलमानों जैसी, और उसे छोड़ दिया। वो कुंडे नगर नहीं गया, दूसरी जगह बना करके रहा। कृष्ण इधर द्वारका पहुंचे, द्वारका में तो तोरण इत्यादि सजाए गए थे, गलियां सजाई गई थी, और वहां पर द्वारका में ले जा करके राजकीय भावना सम्मान के साथ में उन्होंने शादी रुक्मिणी के साथ में की। इस प्रकार रुक्मिणी का विवरण समाप्त हुआ। आज कथा का यहीं पर विश्राम भी है, कल बाकी हम लोग आरंभ करेंगे। गौ प्रमाण
दे हरि हरि वो।
अभी रुक्मिणी विवाह का ये कीर्तन सुनाइए।
जय अच्छा है। आयशा, व्हेन आई वाज कमिंग, ये ब्रह्मचारी रेड क्लॉथ, आई एम नॉट सीइंग हियर
और ब्रह्मचारी,
गोकुल गोकुल,
गोकुल
तो व्हाई ही इज
रोमिंग
हियर एंड दे आर नॉट कमिंग हियर।
मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूँ,
यू शुड टेल हिम व्हाई ही इज नॉट।
अच्छी तरह से याद होगा, जिन लोगों